हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। शाम का वक्त था। नैना के वहां से गए हुए कई घंटे बीत चुके थे, लेकिन आदित्य अब तक हॉस्पिटल से कहीं नहीं गया था। कई लोग उसे समझाने आए थे, जिनमें अनय, रवि, शिवानी, अरविंद, नदीम सब आदित्य के लिए काम करने वाले थे। तभी अरविंद ने उन सबको वहां से जाने के लिए कहा, क्योंकि आदित्य उनमें से किसी की भी बात नहीं सुन रहा था। अरविंद जानता था कि वो किसी की नहीं सुनेगा। उन सबके वहां से चले जाने के बाद अरविंद आदित्य को अपने साथ अलग ले गया, ऐसी जगह जहां वे सीसीटीवी फुटेज में भी न दिखाई दें। वहां आकर उसने धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, सर, आपको कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन यहां से मेरे साथ एक जगह चलना होगा। आदित्य एकदम सीरियस होकर बोला, अरविंद, तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या? या फिर तुम्हें अलग से बोलना होगा मुझे? मैंने कहा ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक नैना को होश नहीं आ जाता। लेकिन सर, अरविंद ने उसे बताया, वो विराज, उसका तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा। मैंने उसे पिछले दो दिनों से बांध कर रखा हुआ है हमारे सीक्रेट प्लेस पर। जब तक आप नहीं आएंगे उसका कुछ नहीं हो सकता। क्या वो उसी तरह पड़ा रहेगा? विराज का नाम सुनते ही आदित्य की आंखों में गुस्सा उभरा और उसने दांत पीसते हुए कहा, नाम मत लो उस इंसान का मेरे सामने। उसकी वजह से ही आज मेरी नैना की ये हालत है। उसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अभी कुछ दिन उसे मौत से ज्यादा बुरी जिंदगी का एक्सपीरियंस करवाओ और उसे कुछ भी खाने को मत देना। सिर्फ पानी पर उसे जिंदा रखो, वो भी दिन में सिर्फ दो या तीन बार ही पानी देना, और जितना हो सके टॉर्चर करो। अरविंद ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है सर, मैं समझ गया, मैं अपने तरीके से हैंडल करता हूँ। वैसे वो लड़का बहुत ही ज्यादा सनकी है और उसका दिमाग भी ठिकाने पर नहीं है। आदित्य ने आदेश देते हुए कहा, कोई बात नहीं, जैसा मैंने कहा है बिल्कुल वैसा करो, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी और उसका सनकीपन तो मैं खुद निकालूंगा। वो भी ऐसा निकालूंगा कि मेरी नैना का नाम तक लेना भूल जाएगा वो, बस एक बार मेरी सोना को होश आ जाए। अरविंद उसकी बात अच्छी तरह समझ गया। अनय थोड़ी दूर पर खड़ा था, उन दोनों की तरफ देख रहा था। उसे कहीं न कहीं पहले से ही इस बारे में अंदाजा था कि विराज को आदित्य ने कहीं छुपा कर रखा है। जब उसने इस बारे में पूछा था तब भी आदित्य ने उसे यही कहा था कि हाँ, वो अपनी जगह पर है। लेकिन इसके अलावा न अनय ने कुछ पूछा और न ही आदित्य ने उसे कुछ बताया। कुछ देर बाद अरविंद से बात करके आदित्य अनय की तरफ आया और उससे बोला, अनय, आई थिंक अब तुम्हें भी घर जाना चाहिए। तुम कल सुबह से मेरे साथ हो और अभी शाम हो गई है, काफी टाइम हो गया है तुम्हें यहाँ पर। और तुम कब से हो यहाँ पर, ये याद है तुम्हें? अनय ने भी उसकी बात सुनकर कहा। आदित्य ने कहा, देखो, मैं इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहता, मैंने पहले ही बोल दिया है और मेरा डिसीजन फाइनल है, मैं कहीं नहीं जा रहा। लेकिन तुम्हें और भी काम होंगे ना, इसलिए प्लीज तुम अभी जाओ, कल सुबह फिर से आ जाना। आदित्य पहले ही इतने ज्यादा स्ट्रेस में था और अनय कल से जानता था कि जब वो किसी बात पर अड़ जाता है तो फिर कोई भी उसे समझा नहीं सकता, इसलिए अनय ने भी उससे बहस नहीं की और ठंडी सांस लेते हुए बोला, ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखना और कोई भी बात हो तो तुरंत मुझे फोन कॉल करना, और अगर मैं फोन कॉल करूँ तो प्लीज रिसीव कर लेना। रहने दो, मैं तुमसे क्यों बात कर रहा हूँ, तुम्हारे असिस्टेंट से बोल देता हूँ। उसकी बात पर आदित्य ने बस हल्के से अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं बोला। अनय भी वहां से नदीम की तरफ आ गया और जाने से पहले उससे बात करने लगा। फिर कुछ देर बाद वो वहां से निकल गया। हॉस्पिटल से निकलकर अनय सीधे घर आ गया। लगभग 8 बज रहे थे, लेकिन उस वक्त भी उसे मनस्वी घर पर नहीं मिली। उसने उसे कॉल भी किया लेकिन उसने रिसीव नहीं किया। फिर अनय ने उसके बॉडीगार्ड को कॉल करके इस बारे में पूछा। उसे पता चला कि मनस्वी फिलहाल अपने होटल में रुकी हुई है और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके विराज को ढूंढने की कोशिश कर रही है। ये बात पता चलते ही अनय अपने मन में कहता है, रहने दो, मैंने कहा था ये सब बेकार की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर आदित्य ने विराज को कहीं छुपा कर रखा है तो तुम्हें वो कभी नहीं मिलेगा, चाहे तुम जितनी कोशिश कर लो। उधर दूसरी तरफ मनस्वी ने एक मिनट भी चैन की सांस नहीं ली। अनय ने उसे फोन भी किया था लेकिन मनस्वी ने उससे बात नहीं की। वो आदित्य की बातों से बहुत ज्यादा हर्ट थी और कुछ भी करके खुद को इनोसेंट प्रूव करना चाहती थी, इसलिए वो विराज को ढूंढ रही थी। उन दोनों की आपस में बात नहीं हो पाई, लेकिन अनय और मनस्वी दोनों ही इस वक्त एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। अगली सुबह, पिछली रात नैना को शूटिंग खत्म करने में काफी देर हो गई थी, इसलिए वो हॉस्पिटल वापस नहीं आई थी। उसे अक्षत से भी बात करनी थी। अनय हॉस्पिटल वापस आ गया था, लेकिन नैना अभी तक वहाँ नहीं आई थी। सुबह का रूटीन चेकअप करने के बाद डॉक्टर रूम से बाहर निकलते हुए बोले, पेशेंट में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट है और हो सकता है आज उन्हें होश आ जाए। ये बात सुनते ही आदित्य और अनय काफी ज्यादा खुश हुए, लेकिन नैना ये खुशखबरी सुनने के लिए उस वक्त वहाँ पर नहीं थी। इसके बाद जब पेशेंट से मिलने का टाइम हुआ तो आदित्य वहाँ पहुँचा और पिछले दिन की तरह ही वो फिर से नैना का हाथ पकड़ कर बैठ गया, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं कहा और उसके साइड में बैठा हुआ वो सिर्फ एक टक उसकी तरफ देख रहा था। इसी बीच उसे फिर से नैना के हाथों में हरकत महसूस हुई। आदित्य भले ही कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन उसकी आंखों से लगातार बहते आंसू बेड पर बेहोश लेटी नैना के हाथों और चेहरे पर गिर रहे थे, जिसकी वजह से नैना की पलकें भी हिल रही थीं। लेकिन कल की तरह आज उसने चिल्लाकर डॉक्टर, नर्स या किसी को भी बुलाकर ये सीन दिखाने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो नैना को होश में आने के लिए उत्साहित करते हुए बोला, हाँ हाँ नैना, तुम ठीक हो सकती हो, आंखें खोलो, देखो मैं यहाँ पर ही हूँ। ये सब बोलते हुए आदित्य लगातार उसे उसका नाम लेकर पुकार रहा था। आदित्य की आवाज़ नैना के कानों में पड़ रही थी। बहुत कोशिश करते हुए नैना ने पलकें खोली और एकदम धीरे से पुकारा, आदि। इतने वक्त के बाद आज आदित्य को नैना की आवाज़ सुनने को मिली और उसे होश में आते देखा। आदित्य एकदम इमोशनल हो गया और वो बहुत ज्यादा खुश भी था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी खुशी और इमोशंस कैसे एक्सप्रेस करे, क्योंकि इतने टाइम से जिस पल का इंतजार कर रहा था वो अब उसके सामने था। इसलिए वो जल्दी से झुककर उसके माथे पर किस करते हुए बोला, सोना, तुम्हें होश आ गया, तुम ठीक हो गई ना, अब तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। इतना बोलते हुए आदित्य की आंखों से खुशी के आंसू गिरने लगे। उसे इस तरह अपने सामने रोते देख नैना फिर से एकदम धीमी आवाज में बोली, आदि, प्लीज चुप हो जाओ, मत रो। मैं नैना को ये सब बोलने में बहुत तकलीफ हो रही थी। बोलते हुए उसकी सांसें भी उखड़ने लगी थीं। जो ऑक्सीजन मास्क उसके चेहरे पर लगा हुआ था वो उसकी गहरी सांसों की वजह से धुंधला हो गया था। उसकी सांसें उखड़ते देख आदित्य ने कहा, श्श, चुप रहो, अच्छा तुम बोलने की कोशिश मत करो, मैं बस अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। इतना बोलते हुए आदित्य अपनी जगह से उठकर भागा, लेकिन उसने नैना का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। नैना भी नहीं चाहती थी कि वो उससे दूर जाए, इसलिए वो बोली, आदि आदि रुको। उसने ऐसा कहकर आदित्य को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत ही धीमी थी और अपनी एक्साइटमेंट की वजह से आदित्य को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। आदित्य सबको ये बात बताने के लिए दरवाजे की तरफ आना चाहता था, लेकिन वो नैना का हाथ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए अपनी जगह पर ही खड़े होकर उसने अनय को आवाज़ लगाई, अनय, अनय यहाँ आओ। आदित्य की आवाज़ सुनकर अनय जल्दी से उस हॉस्पिटल रूम के अंदर आया। उसके वहां पर आते ही आदित्य ने उसे पूरी बात बताई। नैना पहले की तरह ही हॉस्पिटल बेड पर थी। नैना को उसी तरह देखकर अनय को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ और उसे लगा कि वो जरूर ऐसे ही पागलपन में कुछ बड़बड़ा रहा है। लेकिन फिर जब उसने थोड़ा गौर से नैना की तरफ देखा तो उसे नैना की पलकें हिलती हुई दिखाई दीं। जिस ओर गौर से देखने पर उसे समझ आया कि नैना की आंखें खुली हुई हैं और उसके हाथों में भी हरकत है। ये देखकर अनय के चेहरे पर भी हल्की मुस्कुराहट आ गई और उसने डॉक्टर, नर्स सबको वहां पर बुलाया। वहां रूम के अंदर आते ही डॉक्टर्स ने उन सबसे कहा, हाँ हमने आपसे कहा था ना कि काफी अच्छी रिस्पॉन्स है और बिल्कुल ठीक हो जाएंगी आपकी वाइफ, आप फिक्र मत करिए, बस कुछ देर बाहर वेट करिए। आदित्य ने मना करते हुए कहा, नहीं मैं अपनी नैना को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा, वो फिर से बेहोश हो गई तो, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। उसका हाथ छोड़े बिना ये सब बोलते हुए वो बहुत परेशान हो गया, लेकिन फिर भी वो उसे वहां से छोड़कर जाने के लिए राजी नहीं था। वो बच्चों की तरह जिद करते हुए वहीं पर साइड में बेड के पास खड़ा हुआ था और डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट कर रहे थे। उन्होंने आगे आकर धीरे से नैना के चेहरे पर लगा हुआ ऑक्सीजन मास्क उठाया और उसकी सिचुएशन जानने के लिए उससे पूछा, हाउ आर यू मिसेस सिंघानिया। डॉक्टर की इस बात पर नैना ने हल्के से अपना सिर हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो लेटी हुई थी तो ऐसा नहीं कर पाई, इसलिए उसने बस अपनी पलकें झपकाकर इशारा किया और फिर जैसे ही कुछ बोलने की कोशिश की तो उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। ऐसी हालत में देखकर आदित्य का तो दिल ही बैठ गया। नैना को सांस लेने में तकलीफ होते देखकर डॉक्टर ने दोबारा से उसके चेहरे पर वो ऑक्सीजन मास्क लगा दिया और उसे मेडिकेशन देने लगे और फिर कुछ देर बाद आदित्य की तरफ देखते हुए डॉक्टर ने उससे कहा, देखिए मिस्टर सिंघानिया, भले ही इन्हें होश आ गया है और अब ये कोमा में नहीं जाएंगी, आप बस अपने आप को संभालिए और हम पर भरोसा रखिए। आदित्य से नैना की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने उनकी बात पर हाँ में अपना सिर हिलाया और कहा, ओके डॉक्टर, मैं नैना के लिए कुछ भी करूँगा, आप सब बस उसका अच्छे से ख्याल रखिए और उसे पहले की तरह ठीक कर दीजिए। क्रमशः